नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं नमो महाबलान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरातिशय नमः तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय प्रणमामि हरि प्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय देहं मानुषमाश्रित्य कतिवर्षाणि विष्णुभिः जदुपुर्यां सहवासीत् पत्न्यः कत्यभवन् प्रभोः देहं मानुषमाश्रित्य कतिवर्षाणि विष्णुभिः जदुपुर्यां सहवासीत् पत्न्यः कत्यभवन् प्रभोः
इस भौतिक जगत में जब भगवान आते हैं तो अपने स्वरूप में ही आते हैं, खास करके इस ब्रज में। तो महाराज परीक्षित का प्रश्न है, ब्रजे वसन किम करम मधुपुर याम च केशव भ्रातरम चावधित कंसम मातुरधा दरह। भगवान ब्रज में रहकर क्या क्या किए। उसके बाद आपने कहा कि वे मधुपुरी गए, मथुरा जी गए, मथुरा में जाकर के उन्होंने कंस का वध कर दिया। तो कंस तो उनके माई का भाई लगता था, देवकी का भाई था, फिर भगवान ने अपने हाथ से उसका वध क्यों किया? और अब प्रश्न कर रहे हैं कि देहम मानुषमाश्रित कति वर्षाणि विष्णु जदुपुर्जाम सहावासित पत्न्य कत्य भवन प्रभु। पूछ रहे हैं कि अपना नराकार विग्रह प्रकट करके श्री भगवान कितने वर्ष द्वारका में रहे, विष्णु वंशियों के साथ निवास किए जदुपुरी में, द्वारका में। और एक विशेष प्रश्न कर रहे हैं, भगवान की पत्नियां कितनी थी, अर्थात पूछने का अर्थ है कि भगवान किन भाग्यवती कन्याओं के साथ विवाह किए, किस तरह विवाह किए, कहां कहां विवाह किए, ये प्रश्न में छिपा हुआ है। तो मैं इस प्रश्न की उपेक्षा कर दिया था, कई साल इसकी व्याख्या नहीं किया था, खास करके पत्नियां कत्य भवन को हो, मैं उसी की व्याख्या करूंगा। सुखदेव गोस्वामी ने नवम स्कंध के अंत में कहा है कि भगवान कृष्ण बहुत सा विवाह किए और प्रत्येक स्त्री से दस दस पुत्र हुए। तो ये प्रश्न, ये बात सुन करके महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं, प्रभो प्रभु की पत्नियां कति अभवन, प्रभु की पत्नियां कितनी थी। मैं कई साल पहले इसकी उपेक्षा किया था, व्याख्या नहीं किया, तो अभी आज थोड़े से का समय में भगवान के विवाह की कथा कही। जब भगवान द्वारकापुरी का निर्माण करा दिए विश्वकर्मा के द्वारा, बहुत सुंदर नगर समुद्र के मध्य में, तो वहां मथुरा से अपनी जोग माया से मथुरा के सभी लोगों को, यहां तक कि घर द्वार सब कुछ द्वारका ले गए। द्वारका में पहुंचने पर श्री बलराम जी का विवाह हुआ है और बलराम जी का विवाह जब हो गया, बहुत बड़ा उत्सव हुआ। उसके बाद भगवान कृष्ण के पास एक कन्या का पत्र आया, एक लड़की का पत्र आया, वह कुंडिनपुर की थी, भीष्म राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी। वह लक्ष्मी जी का अवतार थी। रुक्मिणी ने पत्र एक ब्राह्मण के द्वारा भेज दिया द्वारका। वह ब्राह्मण आया, बहुत चरित्रवान ब्राह्मण था, भगवान कृष्ण से भेंट किया। भगवान बड़े आदर करते थे ब्राह्मणों का, उन्होंने सत्कार किया ब्राह्मण और एकांत में पूछने लगे उस ब्राह्मण देवता से कि आप कहाँ से आए, आपका आने का उद्देश्य क्या था। क्योंकि भगवान के राजधानी में द्वारका में प्रवेश करना बहुत कठिन था, लेकिन ब्राह्मणों के लिए छूट थी। तो भगवान ने ब्राह्मण से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, मैं राजा भीष्मक की राजधानी कुंडिनपुर से आया हूं। हे प्रभु, आपको राजकुमारी ने पत्र दिया है। तो भगवान कहे कि ठीक है, आप पढ़ करके बताइए। तो ब्राह्मण पढ़ने लगे, रुक्मिणी ने लिखा कि सबसे पहले हे भुवन सुंदर, आपके गुणों को सुन करके मेरा मन निर्लज हो गया है, आप में अनुरक्त हो गया है। जब से मैंने आपके विषय में सुना है तभी से आप में मेरा चित्त आसक्त हो गया है। रुक्मिणी ने भी कहा कि ऐसी कौन सी विवाह योग्य कन्या है जो आपको आपके विषय में सुन करके आप में अनुरक्त न हो जाए। मेरा विवाह होने वाला है, मैं नहीं चाहती हूं मेरा वर शिशुपाल बने, लेकिन मेरे भाई की ये दुष्टता है मेरे पिता की बात को टाल करके मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहता है, और इतना जल्दी कि परसों विवाह होने वाला है, आप इसके पहले आ जाइए कुंडिनपुर। और राक्षस विधि से मेरा विवाह कीजिए, मेरे साथ विवाह कीजिए। एक शर्त रुक्मिणी ने रख दिया है कि यदि आप नहीं आ पाएंगे विवाह से पहले, तो मैं यह शरीर त्यागूंगी, आत्महत्या करूंगी। तो मानो भगवान कृष्ण आशंका करते हैं कि वहां तो राजा लोग रहेंगे, शिशुपाल आएगा और शिशुपाल का मुखिया सरदार वो भी आएगा जरासंध, तो मैं तुम्हारे भाइयों को और तुम्हारी सेना को बिना मारे कैसे विवाह कर सकता हूं। तब रुक्मिणी जी ने लिखा था कि आप गुप्त रूप से आ जाइए कुंडिनपुरी, मेरे पिताजी आपका बड़ा आदर करते हैं, आप आइए, कल आ जाइए। ये उपाय बता दिया कि मैं जब माता गिरजा का पूजन करने जाऊंगी घर से बाहर विवाह के एक दिन पहले, अर्थात कल, तो वहीं से जब गिरजा जी की पूजा करके मैं लौटूंगी तब मेरा हरण कर दीजिएगा। रुक्मिणी जी ने स्वयं उपाय बता दिया कि उस समय कोई लड़ाई नहीं हो पाएगी, आप गिरजा पूजा करके लौटती रही, मेरा अपहरण कर लीजिएगा। लड़ाई की कुछ संभावना है तो आप जादुओं की सेना को कुछ ले लीजिएगा, आप पहले आइएगा, अपनी सेना को पीछे रखिएगा कि यदि वे आप पर आक्रमण करें तो आपकी सेना जवाब देगी, लड़ेगी। भगवान इस पत्र को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं राजाओं के बीच से रुक्मिणी को हर लूंगा, आप खाइए पीजिए आराम कीजिए। और एक दो घंटा विश्राम करने के बाद ही भगवान ने ब्राह्मण से कहा, दारुक से कहा, अपने सारथी से कि मेरा रथ तैयार करो, मुझे कुंडिनपुर जाना है। कुंडिनपुर यह महाराष्ट्र में नागपुर के पास पड़ता है, द्वारका से आना है। तो भगवान रथ पर चढ़े ब्राह्मण के साथ, और रथ पर चढ़ करके बहुत जल्दी रातों रात वे पहुंच गए कुंडिनपुर नागपुर। भगवान ने भी कहा था ब्राह्मण से कि रुक्मिणी जितना मुझे चाहती है उतना ही मैं चाहता हूं। रुक्मिणी की चिंता करके मुझे रात को नींद नहीं आती, तो भगवान आए कुंडिनपुर, वहां महाराज विश्वत ने भगवान का बड़ा स्वागत किया। इससे से बलराम जी भी आ गए, उनको शंका थी कि कृष्ण को राजाओं की सेना घेरेगी, तो वे एक उछावणी सेना लेकर के आ गए पीछे से। राजा भीष्मक ने स्वागत किया दोनों भाइयों का, जब नगर की नारियां नगर के लोग जब देखे कृष्ण को भगवान को, सब लोग यही कहने लगे कि यही पुरुष रुक्मिणी के योग्य है और रुक्मिणी इसी की पत्नी बनने लायक है। सब लोग आपस में कहने लगे हमने जो भी पुण्य किया है धर्म किया है उसका फल ये हो कि हे विधाता रुक्मिणी का पाणी ग्रहण कृष्ण करें। सब लोग बहुत दुखी थे कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से निश्चित हुआ है। पिताजी चाहते थे कृष्ण से विवाह हो, लेकिन बड़ा भाई था रुक्मिणी, वो कृष्ण से द्वेष करता था, क्योंकि वो कंस का सखा था और कंस का वध कर दिया भगवान ने, तो उसका बैर बढ़ गया, विरोध बढ़ गया। इसी विरोध के कारण कृष्ण से विवाह नहीं होने देना चाहते थे अपनी बहन का। इस कारण से सारा नगर शोक में डूबा था। फिर भी महाराज भीष्मक परम धार्मिक ब्राह्मण थे, राजा थे, वे कृष्ण और बलराम का पूर्ण स्वागत किए। विवाह की तैयारी थी शिशुपाल से, इसलिए नगर खूब सजाया गया था, नगर की सफाई की गई थी, अनेक बंधनवार लगे थे, जहां तहां द्वार पर खंभे के किले के खंभे लगे थे, बहुत उत्सव हो रहा था। और शिशुपाल की बारात आ गई थी नगर से बाहर, कैंप लगा था। शिशुपाल अकेले नहीं थे, अनेक राजा लोग थे। कैंप में शिविर में बारात ठहराई गई थी और उसके लिए महाराज भीष्म मंगल आचरण कर रहे थे रुक्मिणी के लिए, हल्दी लगाना इत्यादि कर्म किया जा रहा था। और सवेरे रुक्मिणी अनेक पुलिस से घिरी हुई और ब्राह्मणों की स्त्रियों के साथ वो गिरिजा जी के मंदिर में गए। माता दुर्गा के मंदिर में पहुंच करके रुक्मिणी जी ने अपना पैर धोया बाहर, उसके बाद प्रवेश की मंदिर में प्रणाम की माता दुर्गा प्रणाम की, लेकिन उनका चित्त कृष्ण का चरण कमल का चिंतन कर रहा। उन्होंने माता दुर्गा जी से मांगा कि हे मां, मेरे पति भगवान वासुदेव बने, वसुदेव जी के पुत्र, ऐसा आशीर्वाद दो। माता दुर्गा ने आशीर्वाद दिया तुम्हारी सब पूरी होगी। दुर्गा जी को प्रणाम करके सखियों का हाथ पकड़े हुए श्री रुक्मणी मंदिर से निकले और बहुत जमा जमा थी भीड़, पहले तो राजा भीष्मक के जितने पुलिस थे सब बैरियर लगाए थे, सबके मध्य में ब्राह्मणों की स्त्रियां थी, उसके बीच में सखियां थी रुक्मिणी, रुक्मिणी विवाह के वस्त्र पहनी थी, बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ था, तो स्वयं महालक्ष्मी थी, समस्त राजा भी आ गए थे वैवाहिक जुलूस में, भगवान रथ पर चढ़े चढ़े आ गए थे गिरिजा जी के मंदिर के पास, तो रुक्मिणी जी देख रहे थे कि हमारे पति देव भगवान कहाँ हैं, थोड़ा सा सिर ऊंचा करके देखी, इसी से सभी राजा लोग अपने अपने वाहनों से गिर पड़े, मूर्छित हो गए रुक्मिणी का सौंदर्य देखकर, उनके अस्त्र शस्त्र सब गिर गए थे, रुक्मिणी जी सभी भीड़ के बीच में देख रही थी श्री कृष्ण कहाँ है, उसने देख लिया रथ पर बैठे, तब उस ओर बढ़ने लगे, सभी राजाओं के देखते देखते भगवान रुक्मिणी को अपने रथ पर बैठाए, उन्होंने यह कहा कि हे चंद्रमुखी कहाँ जा रही हो, वे हाथ पकड़ करके रुक्मिणी जी को अपने रथ पर बैठा लिए, दारुक को आज्ञा दी ले चलो रथ, द्वारका के पथ पर ये सभी राजा जब जगे बेहोशी हो गई थी, लेकिन इसके बाद जब जगे तो सब आपस में कहने लगे तुम कहां थे, तुम कहां गए थे, अरे उल्टे गया ग्वाललाल ले गया राजकुमारी को, सभी कह रहे थे कहाँ गया है, धरो धरो पकड़ो पकड़ो, लेकिन जैसे सिंह अपना भाग ले जाए और पीछे से कुत्ते भूमो करे, तो इस तरह से कुत्ते की तरह सब बोल रहे थे, हमको थोड़ी झपकी आ गई थी, तो कहाँ गया वो, कहाँ गई रुक्मिणी, यही कहते थे जो जानते थे कि वो ले गया गोप ले गया, कितना दूर गया होगा, ये सब पीछे चले पकड़ने के लिए, तब तक बलराम की सेना सहित खड़े थे, सबको मार करके भगा दिए। और कृष्ण जब रुक्मिणी का हरण किए तो कोई तेज गति से भागे नहीं, धीर गति से। सिंह अगर कुत्तों के बीच में हो तो घबराएगा नहीं, सबको मारकर खत्म कर देगा। इतना प्रताप है भगवान का, इतना प्रचंड प्रभाव है कि कोई निकट नहीं आ सका। अब श्री बलराम जी पीछे से आ गए थे, वे सबको रोक दिए अपने प्रभाव से। बारात का गोश था जरासंध, शिष्यपाल दुल्हा के रूप में बैठा था शिविर में, तो जरासंध पहुंचा, कहने लगा, शिष्यपाल जी आप एक सोच क्यों कर रहे हैं, आप खाइए पीजिए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, ये सब होता रहता है, ये जादुओं में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन समय बलवान है। देखिए मेरा उदाहरण देखिए, मैं मथुरा पर सत्रह बार चढ़ाई किया, मैं हार गया, फिर भी मैं हिम्मत नहीं तोड़ा, फिर चढ़ाई किया। अठारहवीं बार कृष्ण को और बलराम को भगा दिया मथुरा से। ऐसा होता रहता है, कृष्ण की शक्ति नहीं है, ये समय की शक्ति है, काल की शक्ति है। आप रो क्यों रहे हैं, अरे फिर विवाह हो जाएगा, वो बेचारा दुल्हा के रूप में बैठा था महफिल में, और जरा संध उसको कह रहा था धैर्य रखिए, शोक मत कीजिए, लेकिन उसका शोक तो बढ़ता गया, जितना शोक बढ़ता था उतना ही क्रोध भी कृष्ण पर अब करे क्या। जरासंध बहुत समझाया, मैं वर बनकर के आया था और मेरा विवाह निश्चित था, फिर भी कृष्ण मेरी पत्नी को ले गया। शिष्यपाल के मन में यह वैर विरोध बहुत बढ़ गया, भगवान द्वारका पहुंचे द्वारका में बहुत बड़ा उत्सव हुआ, महोत्सव। कृष्ण को विवाहित देखकर ये भगवान का प्रथम विवाह, सब लोग बहुत खुश हुए। दुल्हन के साथ कृष्ण को देखे, इसे बहुत प्रसन्नता है। उस समय द्वारका बहुत सजाई गई थी, सभी संबंधी आए थे। द्वारका में हस्तिनापुर से, कुरुक्षेत्र से कई लोग आए थे संबंधी। उसके बाद भगवान का दूसरा विवाह जम्बवती जी के साथ हुआ। और तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ। सत्यभामा चाहती थी कि कृष्ण मेरे पति बने, लेकिन उसके पिता ने कहा कि कृष्ण का कोई राज्य नहीं है, उसके साथ विवाह करके क्या करो। और जबरदस्ती सतधनवा का नाम रख बागदान किया, वचन से कह दिया तुम्हारा विवाह सब धनवा से करूंगा। सत्राजित बहुत बड़ा सूर्य का भक्त था। सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के उसको मणि दिए, स्यमंतक मणि। सूर्य भगवान ने कहा कि इसकी जहां पूजा होकर होगी उस स्थान पर मणि के प्रभाव से 80 भार सोना उत्पन्न हो जाए। सोना उत्पन्न करने वाली मणि थी, बहुत मूल्यवान मणि। सूर्य भगवान का मंदिर था द्वारका से बाहर, वहीं वो पूजा करता था। एक दिन स्यमंतक मणि को पहन करके सत्राजित द्वारका में प्रवेश कर रहा था। सब जादुओं ने देखा कि इतना जगमग प्रकाश कैसे हो रहा है, तो सबने आकर के भगवान से कहा। सुधर्मा सभा ने आकर के कहा कि हे प्रभु, आपका दर्शन करने के लिए आज सूर्य देवता आ रहे हैं। इतना प्रकाश अन्य तरह से हो नहीं सकता है। आपका दर्शन करने के लिए लोकपालों का तांता लगा रहता है। आपके यहाँ आपका दर्शन करने के लिए इंद्र आते हैं, वरुण आते हैं, कुबेर आते हैं, तो आज सूर्य देवता आ रहे हैं। भगवान हंस करके कहे, नहीं, वो सत्राजित है, उसके पास मणि है, इसी कारण इतना प्रकाश है। तो सत्राजित को भगवान ने समझाया कि आप ये मणि दे दीजिए उग्रसेन जी को, राजकोष में दे दीजिए, अन्यथा आप पर खतरा हो जाएगा। बहुत मूल्यवान मणि है, इससे कोई आपकी हत्या कर सकता है, इसलिए बैंक में जमा कर दीजिए। द्वारका के राजकोष में दे दीजिए इसको, इसकी सुरक्षा होगी। आप इंटरेस्ट लेते रहिएगा, लेकिन वो दुष्ट उल्टे भगवान पर आरोप किया कि इतना बड़ा लोभी है, अब इसको मणि का लोभ हो गया है, ये केवल अपने फेर में इसको रख कर रखना चाहता है, राजा का बहाना कर रहा है, तो भगवान की आज्ञा को नहीं माना है। एक दिन उस मणि को पहन करके उसका भाई प्रसेन जीत घोड़े पर चढ़ करके शिकार खेलने गया। मणि का ऐसे अपमान नहीं होना चाहिए। तो दूसरी बात है कि भगवान कृष्ण की आज्ञा को ठुकराया था, ये पाप लगा है सत्राजित पर। तो इस कारण उसका भाई प्रसेन मणि को गले में लगा करके गया शिकार खेलने। देखिए संयोग की बात, एक सिंह देख लिया उसको, मणि बहुत चमक रहा था, तो उस सिंह को भ्रम हो गया कि ये मांस है, सिंह मांस का लोग लोभित तो होता ही है, वो घोड़े को और प्रसेन को दोनों को मार दिया, इसका भाई मर गया। इधर सत्राजित हल्ला किया द्वारका में कि मेरे भाई को निश्चित रूप से कृष्ण मारा है, हार लिया, अब उसका पता नहीं। उसने कहा कि ये कृष्ण चोर सेमंतक मणि के लोभ से मेरे भाई को लापता कर दिया है। तो बड़े लोग में, बड़े व्यक्ति में छोटा दोष भी बहुत बड़ा लगता है, बहुत प्रचार हो जाता है। यदि बड़े महान व्यक्ति से छोटी सी गलती हो जाए तो उसको उसका बहुत प्रचार होता है। सत्राजित की दुष्टता के कारण भगवान पर चारों तरफ कलंक आ गया कि ये कृष्ण इतने लोभी हैं, मणि के लोभी, कि मर्डर कर दिए हैं प्रसेनजीत का। लोग आपस में कहने लगे छिप करके अपने अपने घर में, कृष्ण इतने लोभी हैं और मर्डरर हैं। केवल एक बात एक कहने से कि मणि को दे दीजिए राजकोष में, बस यही कारण बन गया। इसीलिए किसी को सलाह नहीं देना चाहिए। बिना पूछे कोई सलाह न दें। अच्छी सलाह है लेकिन फिर भी नहीं देना चाहिए बिना पूछे। पूछने पर तब कुछ कहा जा सकता है। तो जब इस प्रकार का कलंक भगवान पर लगा, सब लोग निंदा करने लगे, उनको चोर और मर्डरर कहने लगे, चोरी और हत्या का कलंक लगा, तब भगवान कुछ द्वारकावासियों के साथ निकल गए अपना कलंक मिटाने के लिए। और द्वारका के लोग थे 10-12 लोग, वे लोग साथ गए। जा करके उन लोगों ने देखा घोड़ा मरा हुआ है और घोड़े के पास ही प्रसेन का शव पड़ा हुआ है। एक सिंह का पंजा उभरा हुआ था और सिंह का पंजा उसके शरीर पर भी लगा, तो वे लोग सब समझ गए कि सिंह ने मारा है प्रसेन को। तो लोग जान गए कि प्रसेन की हत्या सिंह ने किया है, श्री कृष्ण ने नहीं किया है। फिर सिंह के पंजे की निशान थी, उसके संकेत से देख करके भगवान ने कहा कि यह सिंह कहाँ गया है, देखना चाहिए। तो वे चले गए एक गुफा के अंदर। वो गुफा जामवान गुफा कही जाती है, सिरोही के पास राजस्थान में। उसी गुफा में जामवान जी रहते थे। वो सिंह को परास्त करके जामवान उस मणि को ले लिए थे। और अपनी पुत्री को दे दिए थे खेलने के लिए। जब उसने देखा कि एक मनुष्य गुफा में आया हुआ है, तब वो चित्कार करने लगी, रोने लगी। वो कन्या, तो उसकी आवाज को सुनकर के जामवान आए और पहचाने नहीं कि ये हमारे स्वामी हैं। यद्यपि भगवान के रामावतार में वे बहुत सहायता किए थे, लंका के युद्ध में पर फिर भी पहचान नहीं पाए। ये बूढ़े हो गए थे, इसलिए वे पहचान नहीं पाए भगवान को, और आते ही लड़ाई चालू कर दी। घूसा, थप्पड़ इत्यादि से भगवान भी लड़ने लगे अपने भक्त के साथ। बहुत दिन युद्ध चला और गुफा के बाहर लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कृष्ण कब आएंगे। जब नहीं लौटे तब लोग जान गए, मान लिए कि कृष्ण का निधन हो गया। इस सिंह की गुफा में गए हैं, अवश्य कोई खतरा हो गया, इसलिए ये सब लौट गए द्वारका। जाकर के द्वारका में माता दुर्गा की आराधना करने लगे कृष्ण की सुरक्षा के लिए। जमवान वास्तव में भक्त हैं भगवान के, उनकी एक कन्या थी, वास्तव में वो अप्सरा की कन्या थी। देव नारी अप्सरा बहुत सुंदरी थी, तो स्वयं जमवान जी ने कन्या दान दिया कि आप विवाह के जो हो गए हैं तो हमारी कन्या को स्वीकार कीजिए, और कन्या के दहेज के रूप में मणि को दे दिए। भगवान को दे दिए, तो गुफा से बाहर जब भगवान आए तो अपनी पत्नी के साथ आए और दहेज के साथ, और सारी कथा उन्होंने सुनाया कि इस तरह से जमवान इस मणि को ले गए थे और उन्होंने ये मणि दिया है। द्वारका में आकर के भारी सभा में सबके सामने भगवान ने बताया, और उन 12 लोगों ने गवाही दिया जो कृष्ण के साथ गए थे। उन्होंने कहा कि वास्तव में सिंह प्रसेनजीत को मारा था और वही मणि ले गया, और सिंह को हरा करके जमवान जी ले गए, और जमवान से फिर भगवान को प्राप्त हुआ। उन्होंने सुनाया कि 28 दिन गुफा में भगवान रहे, सिंह की गुफा में। भालू भी गुफा में रहता है, वृक्ष भी गुफा में रहता है। तब ये सारी कथा उन्होंने कहा सब लोगों ने कि इस तरह से मणि की प्राप्ति हुई, और मणि के साथ कन्या भी मिली भगवान को। तब द्वारका में इसका प्रचार हुआ कि ये महा झूठा व्यक्ति है सत्राजीत, बहुत नीच आदमी है, इसने भगवान को कलंकित किया। निश्चित इसका कोई न कोई अनिष्ट होगा इस भगवत अपराध के कारण। वो सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, उसने अपनी कन्या का विवाह भगवान कृष्ण से कर दिया, सत्यभामा का। बड़ा लज्जित था, भगवान उन मणि देने लगे सत्राजित को, तो सत्राजित कहा कि नहीं प्रभु, मेरी पुत्री आपको दान दे गई, कन्या दान दी गई, अब आप मणि के वास्तविक अधिकारी आप हैं। लेकिन भगवान मणि को लौटा दिए और सत्राजित को दे दिए। ये जानते थे कि इसके चलते क्या क्या होगा, इनका बड़ा गहन आशय था। सत्राजित के प्रार्थना करने पर भी मणि नहीं दिए, कह नहीं मणि आप रखिए। भगवान ने सत्यभामा जी के साथ विवाह किया, सत्यभामा जी राधा रानी का अंश थे, राधा रानी ही भाव शरीर से सत्राजित की पुत्री बनी थी। राधा रानी हमेशा सोचती रहती थी कि मैं भगवान श्याम सुंदर से मिलना चाहती हूँ, लेकिन सब समय मिल नहीं सकती, बहुत दिक्कत होता है मिलने में। ये चाहती थी कि मैं कृष्ण की पत्नी बनूं, इसी आवेश में होकर के भाव से उन्होंने भाव शरीर ग्रहण किया योग माया के द्वारा। योग माया के प्रभाव से राधा रानी को यह पता नहीं था कि मैं सत्यभामा हूं, लेकिन सत्यभामा के रूप में राधा रानी ही है। ऐसा ललित माधव में श्री रघुप गोस्वामी पाद जी ने लिखा है। इसीलिए सत्यभामा जी का स्वभाव देखा जाता है, बहुत रुष्टती थी, मान करते थे। कुछ ही दिनों के बाद द्वारका में एक खबर आई कि आपके फेरे भाई पांच पांडव लक्षागृह में जल गए। इससे भगवान हस्तिनापुर चले गए। खबर लेने के लिए पांडवों का, वास्तव में जले नहीं थे, तो एक सुरंग के रास्ते से वन में चले गए थे, लेकिन भगवान कृष्ण और बलराम रो रहे थे। इसी समय द्वारका में एक घटना हुई, सत्राजित का मर्डर हो गया। वो सब धनवा बहुत रंज हुआ। जब उसका विवाह सत्यभामा जी से नहीं हुआ तो बहुत क्रोध में हो गया, हमेशा छिद्र देखता था कब कृष्ण से बदला लूंगा। ये अवसर पाकर के कृतवर्मा और अक्रूर ने दो मिल करके उसको इंस्टिगेट किए। उन दोनों ने कहा कि सत्रह जी बहुत बदमाश व्यक्ति है, बदछोड़ आदमी है, वचन दिया था अपनी कन्या का दान आपसे करूंगा, लेकिन वो कन्या दान कर दिया कृष्ण को, इसलिए सत्राजीत क्यों नहीं प्रसेन के रास्ते पर चला जाए, अर्थात प्रसेन की तरह ये भी मर जाए। सब धनवा दोनों के बहकावे में आकर के रात्रि के समय सत्राजीत की हत्या कर दिया। इसके बाद एक समस्या आई कि मणि कहाँ रखा जाए। मणि रखना बड़ा कठिन काम था, उसमें से बहुत प्रकाश निकलता था, तो सत्राजीत हत्या कर दिया। हत्या करते समय बहुत से स्त्रियों ने देखा, लोग मना कर रही थी, लेकिन जबरदस्ती जैसे कसाई पशु का वध कर देता है इस प्रकार वो वध कर दिया। बात खुल गई कि सब धनवा ने मारा है। फिर भगवान जल्दी जल्दी आए बलराम जी के साथ, अपने गांव का समाचार सुन करके आकर के वे पता लगाने लगे मणि कहाँ है। सब धनवा द्वारका से भाग चला। ये पता लग गया था कि सब धनवा ने हत्या किया है मेरे ससुर की, इसलिए वह सीधे सब धनवा का पीछा किए, वो घोड़े पर चढ़ करके भागा, बहुत तेज गति से चलने वाला घोड़ा, लेकिन भगवान के घोड़े के समान वो भाग नहीं सकता था, तो जाकर के गिर गया। उस सब धनवा का घोड़ा गिर गया, इसलिए भगवान उसको पकड़े, उसके पॉकेट को जो है, बैग को जो है, कहाँ है लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसी समय श्री बलराम जी को एक शंका हो गई कि कृष्ण चोरी किया है। बचपन में इसकी आदत थी दही चुराने की, माखन चुराने की। एक दिन माखन चुराया और हीरा चुराने लगा, मणि चुराने लगा। सब धनवा के पास जब मणि नहीं मिला तब शंका हुई कि तब कृतवर्मा या अक्रूर के पास मणि होगा। फिर द्वारका में आकर के भगवान पता लगाने लगे। कृष्ण वर्मा द्वारका छोड़ करके भाग गए और अक्रूर जी भी भाग गए। सब धनवा इसके पहले अक्रूर जी से प्रार्थना किया कि आप सब धनवा का वध करने के लिए हमको इंस्टिगेट किए, हमारी रक्षा कीजिए। तो अक्रूर जी ने साफ जवाब दिया कि हम भगवान से विरोध नहीं कर सकते हैं। तुमको तुमने सुना होगा वे 7 दिन के थे, 7 वर्ष के, तो 7 कोस ऊंचा पर्वत को उन्होंने उठा लिया, गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, उनमें अद्भुत शक्ति है। हम तो नहीं जानते थे कि तुम खोल 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 दोगे बात। तो कृतवर्मा के पास गए तो वो भी जवाब दे दिया, ये संसार का ध्वंस हो जाता है, उनके एक अंश संकर्षण के फूकने से। मैं ऐसे बलवान भगवान से बैर नहीं कर सकता, और तुमको मैं कहा था कि सब धनवा को मारो, लेकिन इसका क्या अर्थ है? क्या हमारे कहने से तुम कुएं में कूद पड़ोगे? मणि को देना चाहता था कृतवर्मा को, लेकिन कृतवर्मा जवाब दे दिया, अंत में पता लगेगा भगवान कृष्ण को कि मणि कृतवर्मा के पास है, तो वह मेरा वध करेंगे। इसलिए मैं तुमको शरण में नहीं रख सकता, मणि भी नहीं रख सकता। तब अक्रूर के पास गए, अक्रूर जी ने भी जवाब दे दिया, मैं मणि नहीं हूं। तब वह मणि को अक्रूर जी के घर में फेंक करके चला गया, जहां मणि बरामद होगी वो दोषी पाया जाएगा। तो अक्रूर जी उस मणि को कपड़े के लपेट करके, उसका प्रकाश छिपा करके और बैग में रख करके लोग हो गया। इतने बड़े भक्त लेकिन लोग हो गया, मणि को रख दिए। भगवान जब द्वारका में आए, प्रसेनजीत का नहीं सब धनवा का वध करके, तो पता लगाने लगे मणि कहाँ है कहाँ है, कहीं पता नहीं लग रहा था। तो उन्होंने अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी उस समय काशी चले गए थे अपने मामा के गांव, तो वहां जा करके बहुत से यज्ञ करते थे, रोज हजारों ब्राह्मणों को रोज खिला रहे। भगवान को पता लगा कि अक्रूर सहस्रों ब्राह्मण को खिला रहे हैं, दान दे रहे हैं, अवश्य ये मणि का प्रभाव है, मणि सोना उगलता होगा, इसी से अक्रूर इतना दानी हो गए। तो उन्होंने कहा, बुलाया पत्र लिख करके, पत्र बाहर को भेज करके कि अक्रूर जी को बुला रहा हो। अक्रूर जी जब आए तो उन्होंने मणि को दिखाया, भगवान के कहने से। भगवान ने कहा कि चाचा जी हमको मणि की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सच्ची घटना है उसका पर्दाफाश करना चाहता हूं। वास्तव में आप हत्या नहीं किए हैं, लेकिन हत्यारा आपके पास मणि रख करके गया है। केवल इस मणि को दिखा दीजिए और समझाइए, बताइए लोगों को कि आपको मणि की प्राप्ति कैसे हुई। तब अक्रूर जी सुधर्मा सभा में सबके सामने सारी कथा सुना दी। हे प्रभु, वास्तव में मुझे दुर्विचार आ गया था, मैंने सब धनवा को उकसाया, इस वर्मा भी था उकसाने में, इसी कारण वो मणि को हमारे पास रह करके चला गया। मणि जब मैं देखा तब मेरे मन में लोभ आ गया, मैं उसको लेकर के भाग गया अपने मामा गांव। आप सर्वांतर जानी हैं, आपसे क्या छिपा है। इतने महान भक्त अक्रूर, उनमें दुर्विचार कैसे आ गया। इसका उत्तर नारायणियम में कहा गया है कि अक्रूर जी को बहुत अभिमान हो गया था कि मैं विज्ञानवान हूं, मुझे बहुत ज्ञान है, भगवान का अनुभव है, और उसके अलावा यह अभिमान था कि मैं जितेंद्रिय हूं। इसी अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान उनके मन में दुर्विचार ला दिए। सत्यभामा जी के विवाह संबंध में कई घटनाएं हुई। इसके बाद श्री कृष्ण मित्रता के कारण कुछ दिन के लिए, एक साल के लिए इंद्रप्रस्थ गए। इंद्रप्रस्थ जहां पांडवों की राजधानी थी, द्वारका में रहते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ मित्रता किए, और अर्जुन की मित्रता से प्रभावित होकर वे इंद्रप्रस्थ चले गए। इंद्रप्रस्थ में अर्जुन ने खांडव वन का दाह किया। अग्नि देवता को मंदाग्नि हो गई थी, बहुत वर्ष तक घी पीते रहे, घी पीने से मंदाग्नि हो गई। तब वे ब्रह्मा जी से कहे कि हे प्रभु, मुझे मंदाग्नि हो गई है, मैं क्या उपाय करूं। तो ब्रह्मा जी ने बता दिया, तुम कृष्ण भगवान से और अर्जुन से कहो। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन से अग्नि देवता ने प्रार्थना किया, हमें क्या करें। तो उन्होंने कहा इसके लिए आपको सूखा ईंधन खाना पड़ेगा, सूखा ईंधन। बहुत घी पिए हैं इसलिए आपके पेट की आग मंद हो गई है, मंदाग्नि। तो अर्जुन से उन्होंने कहा कि मैं खांडव वन जो इंद्रप्रस्थ के पास था इस वन को जलाना चाहता हूं, लेकिन इंद्र के द्वारा असुरक्षित वन है, आप हमारी मदद करेंगे तब मैं जला पाऊंगा। बहुत घनघोर वन था, उसमें बड़े बड़े सिंह है, बाघ है, सुअर वृक्ष आदि रहते थे। तो भगवान कृष्ण को सारथी बना करके अर्जुन उस वन को जलाने लगे। जब जलाने का प्रयास किया तो उस वन को वर्षा करके इंद्र देवता सिक्त करना चाहते थे। इसके लिए इंद्र की वर्षा को अर्जुन अपने बाणों से रोक दिए, वर्षा नहीं होती थी। और उसको जलाने लगे। उसी जलाने के सिलसिले में वे एक दानव को जिसका नाम मय था, मय दानव को बचा दिया, जलने से बचा दिया। इंद्र जब मारना चाहते थे वज्र से तो अर्जुन भगवान कृष्ण की शक्ति से अपने बाण द्वारा इंद्र की शक्ति को हत कर दिए, मार नहीं पाए। इस तरह से मय दानव बच गया। वो भगवान की शरण में आया तो भगवान ने उसको कहा कि तुम एक काम करो, तुम महाराज युधिष्ठिर के लिए उस खांडव वन में एक नगर का निर्माण करो। और महाराज युधिष्ठिर के लिए एक सभा भवन बनाओ। सभा भवन वह मानव नहीं, दानव इतना कलाकार था कि सभा भवन बनाया। उसमें जल के जहां एक स्तर दिखता था कि जल है, वहां जल नहीं था, वो मणि था। और जहां मणि का स्थान था वहां जल बना। भवन के बीच बीच में पुष्करणी बनाया, लेकिन ऐसे पुष्करणी बनाया कि लगता था कि कोई बहुत सुंदर मार्बल है, फर्श है। और वहां जल होता था और जल का जहां आभास होता था वहां मणि रहता था। उसी सभा भवन में राजस्वीय यज्ञ हुआ था और दुर्योधन जब भवन में गया तब उसको भ्रम हो गया जल का कि ये गहरा जल है, तो धोती उठाने लगा और जहां फर्श दिखता था निश्चिंत चलता था। जब निश्चिंत चलने लगा तो गज से जल में डूब गया, गिर गया। इस पर भीमसेन को और द्रौपदी को हंसी आ गई भगवान उसी सभा में बैठे थे। भगवान ने इशारा किया, देखो ये अंधा का पुत्र है, इसको दिखता नहीं, फर्श पर धोती टांग लिया और जहां जल है बिना धोती टांगे गिर गया। वास्तव में पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान ने यह बीजारोप किया। भगवान जानते थे कि यह सारे क्षत्रियों को अपने पक्ष में करके लाएगा और उसका संहार कर दिया जाएगा भीम और अर्जुन के द्वारा। तो इसी कारण से दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ और द्रौपदी के प्रति ईर्ष्या करने लगा। तो अर्जुन जब खांडव वन में रह रहे थे उस समय एक दिन भगवान कृष्ण कहे, चलो मेरे साथ तुम जमुना के किनारे। दोनों घूमने निकले तो भगवान ने देखा एक बहुत सुंदरी कन्या, तेजस्विनी कन्या तपस्या कर रही जमुना के तट पर। तो भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने अपने सखा अर्जुन को भेजा, कहा कि देखो ये तपस्या कर रही है लड़की, यह अवश्य अविवाहिता होगी, तुम जाकर के उससे पूछो कि कहाँ की है, कौन है, क्या नाम है। तो अर्जुन भगवान की आज्ञा से गए उस कन्या के पास और उन्होंने बड़े विनीत शब्दों से पूछा, आप कौन हैं, यहाँ क्या कर रही है, आपका उद्देश्य क्या है। तो उस कन्या ने बताया कि मैं सूर्य की पुत्री हूं, मेरे पिता ने यहाँ एक भवन बनवा दिया है, मैं उसी में रहती हूँ। मैं भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तप करती और मैं तब तक तप करती रहूंगी जब तक भगवान विष्णु का दर्शन नहीं होगा। अर्जुन आकर के बताए भगवान कृष्ण से, तब भगवान गए उस कन्या के पास और उसे रथ पर बैठा करके इंद्रप्रस्थ में आए, नगर में लाए। उसने बताया कि मेरा नाम कालिंदी है, ये भगवान का चौथा विवाह है। इसके बाद भगवान कौशल देश में गए। कौशल देश लगभग लखनऊ के पास है। उसको अवध भी कहते हैं। कौशल देश में जा करके भगवान ने राजा नग्न जीत का आतिथ्य स्वीकार किया। भगवान को देख करके राजा कुशलपति बहुत प्रसन्न हुए। उनका नाम था लग्नजीत और उनकी एक कन्या बहुत सुंदरी थी, उसका नाम था सत्या और पिता के कारण उसका नाम था नग्नजीत। नग्नजीत की पुत्री थी इसलिए नग्नजीती कहते थे लोग। तो भगवान राजा के स्वागत को पा करके बहुत प्रसन्न हुए। राजा बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, भक्त थे। तो भगवान ने कहा कि कन्या भगवान के पास आई कुछ खिलाने के लिए, तब भगवान को इच्छा हो गई कि मैं मेरी यह पत्नी बनती तो बहुत अच्छा होता। तो राजा नग्नजीत से भगवान ने कहा कि हे राजा, हे राजन, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय के लिए याचना करना बहुत निंदित है, लेकिन फिर भी मैं एक याचना कर रहा हूं, आपसे एक मांग कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी कन्या का विवाह मुझसे हो, ये मेरी पत्नी बने। तो राजा ने कहा, हे प्रभु, आप स्वयं लक्ष्मी पति हैं, लक्ष्मी जी आपके वक्षस्थल पर रहती हैं, कन्या के लिए आप ही वर हैं, योग्यतम वर। लेकिन मैं पहले से ही एक शर्त कर दिया, एक प्रतिज्ञा किया हूं, क्षत्रियों के शौर्य पराक्रम की परीक्षा करने के लिए मेरे गौशाला में 7 सांड हैं, 7 बैल हैं, बहुत दुर्दांत बैल, उनको कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। मैंने यह प्रतिज्ञा किया कि जो वीर इन 7 बैलों को एक साथ अपने बस में कर लेगा, उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करेंगे। वैसे आप ही सबसे योग्यतम वर हैं, फिर भी मेरी प्रतिज्ञा है तो उसको पूरा करना चाहता हूं। इस प्रतिज्ञा को सुन करके अनेक राजकुमार देश देश से आए, पर किसी ने उन बैलों को अपने वश में नहीं किया, उल्टे बैल ही उसके मार करके हाथ पैर तोड़ दिए। यहां आकर के कितने राजकुमार लंगड़ा बनकर के गए, लूल्हे बनकर भी गए, किसी के पेट को फाड़ दिए सिंह से, किसी को पटक दिए बैल। तो आप देख लीजिए, गौशाला में 7 बैल रहते हैं, बहुत बलवान है। भगवान कृष्ण गए, उन 7 बैलों को वे नाथ लिए, 7 रूप बना करके, एक ही कृष्ण, 7 कृष्ण बन गए। 7 कृष्ण बन करके बैल को अपने बस में कर लिए, नाथ चढ़ा लिए, 7 बैलों को नाथ में डाल करके वे खींचने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे छोटा बच्चा खिलौनों को खींचता है, जैसे काठ के बने हुए बैल को खींचे या प्लास्टिक के बैल को खींचे, इस तरह से भगवान सातों को बस में करके नाक चढ़ा करके खींचना है। तो बहुत धूमधाम से विवाह हुआ, अर्जुन उस समय सात थे भगवान के। बहुत भारी दहेज दिया कौशल नरेश ने, नग्निजिती का विवाह हुआ। फिर नग्निजित महाराज ने अपने दामाद श्री भगवान और अपनी पुत्री को विदा किया। विदा करते समय बहुत बड़े बड़ी दहेज दिए, पत्नी नग्निजिति को लेकर के भगवान जब आ रहे थे द्वारका, तो बहुत से राजाओं ने भगवान को ललकारा, घेर लिया, इस कन्या को हम रखेंगे नहीं देंगे, कह करके बहुत से अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे भगवान के ऊपर। लेकिन अर्जुन साथ में थे, वे अपने गांडीव धनुष पर बाण का अनुसंधान करके छोड़ने लगे, इससे सभी भाग गए। सुखदेव जी कहते हैं जैसे सिंह के अग्रदहाड़ से हल्ले वगैरह छोटे छोटे पशु भाग जाते हैं, ऐसे सारे राजा लोग भाग गए। भगवान सुरक्षित द्वारका आए थे। इसके बाद मित्र बिंदा से भगवान ने विवाह किया। भद्रा भद्रा अवंतिका से थी, उज्जैन से। भगवान की एक बुआ थी, उसका विवाह अवंतिका में हुआ था। उसकी लड़की थी सुत कीर्ति। नहीं, भगवान की बुआ का नाम था सुत कीर्ति और सुत कीर्ति की पुत्री थी भद्रा। तो भद्रा से भगवान ने विदा किया। गोत्र विवाह मना किया गया है, लेकिन पिता की बहन का विवाह दूसरे गोत्र में हुआ था, इसीलिए उसकी लड़की से भगवान ने विवाह किया। वो धर्म के अनुकूल था। और एक विवाह किया लक्ष्मणा नामक कन्या से, वो भी कैकेय देश में विवाह हो गया। कैकेय देश के राजा धृष्टकेतु की वो पुत्री थी। लक्ष्मणा जो सब शुभ लक्षणों से युक्त थी, तो भगवान की पटरानी बनी आठवीं। इस तरह से मैं आठ भगवत प्रियाओं की कथा सुनाया। सबसे पहले रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, सत्य नग्नजीति और भद्रा मित्रविंदा लक्ष्मण भगवान की समस्त रानियों में श्रेष्ठ थी। इसीलिए इनको पटरानी कहते हैं। इसके अलावा भगवान ने 16,100 विवाह किया एक ही स्थान में। इंद्र भगवान आकर के द्वारका में भगवान से शिकायत किया भौमासुर की। भौमासुर बहुत अत्याचार करता था, वो प्राग ज्योतिषपुर में रहता था। प्राग ज्योतिषपुर आसाम में पड़ता है। अब तो उसका नाम सुणितपुर है। वहां वो रहता था, बहुत बड़ा क्षेत्र में वो किला बनाया था। अनेक भवन बने थे उसने। वो 16,000 राजपुत्रियों का हरण करके रखा था। अलग अलग स्थान से 16,100 राजकुमारियों को जबरदस्ती अपने घर में रखा था। इंद्रदेव ने आकर के भगवान से कहा, माता अदिति का कुंडल और इंद्र का कवच भी छत्र, कवच नहीं छत्र, इंद्र का छत्र और माता अदिति का कुंडल छीन लिया था। और नरक उसका नाम था नरकासुर। उसको भौमासुर भी कहते हैं क्योंकि भूमि का पुत्र था भौम। तो भगवान ने स्मरण किया गरुड़ जी का। गरुड़ जी स्मरण करते ही आ गए द्वारका। और गरुड़ जी पर चढ़कर भगवान भौमासुर के भवन में गए, उसके नगर में गए। भौमासुर का नगर जल से, अग्नि से, कई प्रकार के आवरणों से घिरा था, अस्त्र शस्त्र से, हाथियों से। किला के तरफ, किला के आसपास सुरक्षा दी जाती है। और ऐसे वह बहुत सुरक्षित रखा, लेकिन उसके नगर में भगवान ने आसानी से प्रवेश किया, क्योंकि गरुड़ पर चढ़े थे। उनके साथ सत्य भामा जी भी, भगवान के आगे गरुड़ जी पर बैठे हुए थे सत्य भामा जी। भगवान प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश किए आसानी से, जैसे कोई वन में प्रवेश करता है। भौमासुर का सेनापति मूर था, मूर नाम का दैत्य, उसके पांच सिर थे। वहां पहुंच करके भगवान अपना पांचजन्य शंख बजाए, शंख की ध्वनि सुन करके मूर दानव उठा और देखा कौन आ रहा है, तो उसने देखा कि गरुड़ गरुण वाहन भगवान को भी देखा। किले के चहर दियारी को भगवान ने अपने गदा से तोड़ दिया। गरुड़ जी हाथियों को पकड़ पकड़ कर दिया, दिखते थे मर जाते थे। फिर भगवान पर प्रहार किया, भगवान सुदर्शन चक्र से उसकी पांचों गर्दन उतार दी, पांचों मस्तक काट दिए। इसी से मूर का शत्रु होने से भगवान को मुरारी कहते, मुदस्य अरि मुरारी। इसके बाद वे उसके भवन में प्रवेश किए, उसका विचित्र भवन था, बहुत बड़ा भवन, इसमें अनेक कक्ष थे और उन कक्षों में कन्याएं थी, ये सब सुरक्षित थी। उनका भोजन वस्त्र आदि से बहुत ठीक से चलता था और भौमासुर उनका स्पर्श नहीं किया था, और किसी मुहूर्त में सबके साथ विवाह करना चाहता था। नारद जी ने बता दिया था कि एक बहुत अच्छा मुहूर्त आएगा, उसमें पानी ग्रहण करने से तुम भगवान विष्णु जैसा सौभाग्य प्राप्त करो। लेकिन वो अभी प्रतीक्षा में था, उसके पहले भगवान पहुंच गए। उन कन्याओं ने देखा भगवान, सबने देखते ही मन निश्चय किया यही पुरुष हमारे पति बनेंगे, पति हो। भगवान से मन ही मन प्रार्थना किए, भगवान तो सबके हृदय की बात जानते हैं। भगवान ने स्वीकार किया अपने मन में कि ठीक है, मैं आप लोगों को स्वीकार करूंगा। उस समय का समाज बड़ा स्ट्रिक्ट था, कोई कन्या एक रात भी किसी दूसरे के घर रह जाती थी तो उसे समाज पतित समझता था, स्वीकार नहीं करता था। अरे कन्याएं तो सालों भर से कैद थी और भवासुर के द्वारा, तो जब गरुड़ जी हाथियों को मार रहे थे तब उसने गरुड़ जी पर एक सूर्य का प्रहार किया, गरुड़ जी उसके चोट से बिल्कुल घबराए नहीं। इसके बाद सुदर्शन चक्र से भगवान ने भौमासुर का गला काट दिया, गिरा। भौमासुर के मरने से बड़ा हाहाकार हुआ, हाय हाय लोग करने लगे। इसके बाद श्री भगवान उसके भवन में प्रवेश किए, स्त्रियों ने जो अपने मन से स्वीकार किया था, वर्ण किया था भगवान, तो भगवान उनकी इच्छा को पूरा किए और सबको पालकी में बैठा बैठा कर द्वारका भेज दिया। एक शुभ मुहूर्त में, एक ही मुहूर्त में सभी स्त्रियों का भगवान ने पाणी ग्रहण किया। सोलह हजार एक सौ स्त्रियां, लेकिन 16,100 कृष्ण बन गए, 16,100 पुरोहित भी बने और देवकी वसुदेव भी 16,000 बन गए। तो इस प्रकार भगवान ने विवाह किया, 16,100 और आठ पहले से 16,108। इतनी पवित्र गृहस्थी जिसको देखने के लिए स्वयं श्री नारद मुनि आए थे द्वारका। नारद जी को इच्छा हो गई कि मैं भगवान की गृहस्थी देखना चाहता हूं, इन इतनी स्त्रियों के साथ कैसे रहते हैं, देखने के लिए आए। जब प्रथम बार वे रुक्मिणी जी के घर में गए तो भगवान तुरंत खड़े हो गए। घर से बाहर जब श्री नारद जी थे तभी खड़े हो गए और भगवान प्रणाम किए नारद जी को, साष्टांग प्रणाम, और कहे हे मुनिवर, आपका दर्शन हुआ, मैं पवित्र हो गया। गृहस्थ का जीवन बड़ा बंधन का जीवन है, आप धन्य हैं, सारे जगत में घूमते रहते हैं, आप हमारे यहाँ कुछ दिन रही है, हमें धन्य कीजिए। श्री नारद मुनि और भी स्त्रियों के घर में गए, किसी घर में भगवान तत्वंग खेल रहे थे, किसी घर में वे अपनी बेटी का विदा कर रहे थे विवाह के बाद, किसी घर में अपने बहू को बुला रहे थे, किसी घर में वे हवन कर रहे थे, अनेक भवनों में अनेक कृष्ण प्रत्येक समय में उठ करके नारद जी को प्रणाम कर रहे ऐसे कह रहे थे कि आप कब आए मुनि श्रेष्ठ। नारद जी ने अंत में कह दिया, मैं आपकी माया को बहुत देखा, आप इस तरह दिनहीन गृहस्थ का अभिनय कर रहे हैं, आप साक्षात परब्रह्म हैं, श्री भगवान है, तब भगवान ने स्पष्ट कहा कि पुत्र तुम खेद मत करो, मैं ही वेद बनाया हूं, वेद में गृहस्थ के धर्म आदि सबको मैं बनाया, इसलिए यदि मैं आचरण करके नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा, इसीलिए मैं सब कर रहा हूं। इस तरह भगवान ने गृहस्थ धर्म का निर्वाह किया, लीला किया द्वारका में। जय श्रील प्रभुपाद।